श्रीमद् भागवतम से ये पाठ पंचम स्कंध अध्याय 2 श्लोक संख्या 15। रूपम तपः धनः तपः चरताम तपघ्नम हि एतत् तु केन तपसा भवता उपलब्धं चर्तुं तपः अर्हसि मया सह मित्र मह्यं किंबा प्रसीदति सह वै भवभावनः मे रूपं तपोधन तपश्चरतां तपोघ्नं हियेतत् केन तपसा भवत उपलब्धम् चतुः तपः अर्हसि मया सह मित्रमह्यं किंवा प्रसीदति स वै भवभावनो मे रूपं तपोधन तपश्चरतां तपोघ्नं हियेतत्तु केन तपसा भवतो उपलब्धम् चतुं तपर्हसि मया सह मित्रमह्यं किंवा प्रसीदति स वै भवभावनो मे रूपं तपोधन तपश्चरतां तपोघ्नं हियेतत् केन तपसा भवत उपलब्धम् चतुं तपोहसि मया सह मित्रमह्यं किंबा प्रसीदति स वै भवभावनो मे तपं तपोधन तपश्चरतां तपोघ्नं हियेतत् केन तपसा भवत उपलब्धम् कोई माता है तपोधन तपश्चरतां तपोघ्नं हियेतत्तु तपेन तपसा भवतो उपलब्धम् चतुः तपोहसि मया सह मित्रमह्यं किंमा प्रसिद्धति स वै भव भावनोमि। शब्दार्थ रूपम सुंदरता, तपह धन हे श्रेष्ठ तपस्वी, तपह चरता तपस्या में संलग्न पुरुषों का, तपघ्नम तपों का विशिष्ट करने वाला, तपों का विनिष्ट करने वाला, ही निश्चय ही, एतत यह, तू निसंदेह, केन किस, तपसा तपस्या के द्वारा, भवता तुम्हारे द्वारा, उपलब्धम प्राप्त किया, चतुहुम करने के लिए, तपह तप अर्हसी तुम्हें चाहिए, मया सह मेरे साथ, मित्र हे मित्र, मह्यम मुझको, किंबा अथवा संभव है, प्रसिद्धति प्रसन्न होता है, सह बह वै निश्चय ही, भव भावन इस ब्रह्मांड का सृजन करता, मैं मेरे साथ, अनुवाद तथा तात्पर्य कृष्ण कृपा स्मृति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी की द्वारा, जगतगुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हे श्रेष्ठ तपस्वी, तुम्हें दूसरों की तपस्या को भंग करने वाला यह अद्भुत रूप कहाँ से प्राप्त हुआ? तुमने यह कला कहाँ से सीखी? हे मित्रों, तुमने इस सुंदरता को प्राप्त करने के लिए कौन सा तप किया है? मेरी इच्छा है कि तुम मेरे साथ तपस्या में सम्मिलित हो जाओ, क्योंकि हो सकता है कि इस ब्रह्मांड के स्रष्टा भगवान ब्रह्मा ने मुझ पर प्रसन्न होकर तुम्हें मेरी पत्नी बनने के लिए भेजा है। कृपया दोहराइए, हे श्रेष्ठ तपस्वी, तुम्हें दूसरों की तपस्या को भंग करने वाला यह अद्भुत रूप कहाँ से प्राप्त हुआ? तुमने यह कला कहाँ से सीखी? हे मित्रों, तुमने इस सुंदरता का प्राप्त करने के लिए कौन सा तप किया है? मेरी इच्छा है कि तुम मेरे साथ तपस्या में सम्मिलित हो जाओ, क्योंकि हो सकता है कि इस ब्रह्मांड के स्रष्टा भगवान ब्रह्मा ने मुझ पर प्रसन्न होकर तुम्हें मेरे पत्नी बनने के लिए भेजा हो। तात्पर्य, अग्निध्र ने पूर्वचिति की अपूर्व सौंदर्य का प्रशंसा की। दरअसल उसे ऐसा अद्वितीय सौंदर्य देखकर आश्चर्य हुआ जो पूर्व तपस्या का फल हो सकता है। इसलिए उसने उस बालिका से प्रश्न किया कि उसने यह रूप कहाँ, ये रूप कहीं अन्यों की तपस्या को भंग करने के लिए तो नहीं प्राप्त किया। उसने विचार किया कि हो न हो ब्रह्मांड के सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी ने उस पर प्रसन्न होकर ही उसे उनकी पत्नी बनने के उद्देश्य में भेजा है। उसने पूर्वचिति से पत्नी बनने की प्रार्थना की जिससे वे दोनों मिलकर तपस्या कर सकें। दूसरे शब्दों में यदि पति तथा पत्नी आत्मज्ञान के एक ही धरातल पर हो तो उपयुक्त पत्नी गृहस्थ जीवन में तपस्या करने में अपनी पति की सहयोग कर सकती है। आत्मज्ञान के बिना पति तथा पत्नी समान पद पर स्थित नहीं हो पाते। ब्रह्मा जी की यही इच्छा रहती है कि अच्छी संगति अच्छी संतति जन्मे। अतः जब तक वे प्रसन्न नहीं होते किसी को अनुकूल पत्नी नहीं मिल सकती। वास्तव में विवाह उत्सव में ब्रह्मा की उपासना की जाती है। आज भी भारत में विवाह के निमंत्रण पत्रों के ऊपर ब्रह्मा जी का चित्र बना रहता है। हरे कृष्ण। ओम अज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुभे नमः। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति सोपदान्तिकम्। वन्दे अहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरोन्वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथानितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णा चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सहगणललिता श्रीविशाखानितांश्च। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। नमो महाबदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतिशय नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। रूपं तपोधन तपश्चरतां तपोघ्नं एतत्तु केन तपसा भवतो उपलब्धं। चत्तुं तपहर्षिमया सह मित्रमह्यं किंवा प्रसिदति सवयि भवभावनो मे। हे श्रेष्ठ तपस्वी तुम्हें दूसरों की तपस्या को भंग करने वाला यह अद्भुत रूप कहाँ से प्राप्त हुआ? तुमने यह कला कहाँ से सीखी? हे मित्र तुमने इस सुंदरता को प्राप्त करने के लिए कौन सा तप किया है? मेरी इच्छा है कि तुम मेरे साथ तपस्या में सम्मिलित हो जाओ, क्योंकि हो सकता है कि इस ब्रह्मांड के स्रष्टा भगवान ब्रह्मा ने मुझ पर प्रसन्न होकर तुम्हें मेरी पत्नी बनने के लिए भेजा हो।
तो अग्निध महाराज प्रियव्रत के ज्येष्ठ पुत्र था और जिन्होंने विशेष रूप में जम्बू द्वीप के ऊपर शासन करने की अधिकार प्राप्त की थी। और लेकिन राज्य शासन तो कुछ साल तक उन्होंने अकेले ही करते रहा, लेकिन बाद में सोचने लगा कि अवश्य मुझे विवाह करना चाहिए, क्योंकि राजा को बैचलर नहीं होता, कोई राजा बैचलर रहता है, बिना शादी के कोई राजा नहीं होता, राजा के साथ में अवश्य रानी होना जरूरी है, क्षत्रियों को ऐसे अनुमति है उनको विवाह करना, गृहस्थ आश्रम में जाना, और यदि विशेष रूप में राजा है तो एक से भी दूसरे कई अधिक पत्नी स्वीकार करने की भी उनको अनुमति व अनुमोदन होता है शास्त्र में। तो इसलिए अग्निद्र ने जब इच्छा प्रकट की कि उस इच्छा हुई कि मुझे गृहस्थ जीवन में प्रवेश करना है, एक पुत्र संतान उत्पन्न करके ये जम्बूद्वीप के शासन की भार उसको देकर मैं स्वयं मेरे पितरों के पास जाऊंगा, उनकी इच्छा था कि पितरों के पास जाना, इनके पितरों विशेष रूप में जहाँ पर स्वयंभू मनु उनकी जो पितामह अग्निद्र के पिता थे प्रियव्रत, और प्रियव्रत के पिता थे कौन, स्वयंभू मनु, स्वयंभू मनु के पिताजी कौन, ब्रह्मा। इसलिए इनकी इच्छा था कि पितरों पितृलोक में जहाँ पितरों को रहते हैं स्वयंभू मनु विशेष रूप में रहते हैं वहाँ जाने का, लेकिन जाने के पहले राज्य को संभालने के लिए एक पुत्र संतान का भी उत्पन्न करना चाहते थे, इसलिए वो शादी करने के लिए निश्चित किया। तो शादी करने के लिए निश्चित किया, लेकिन वो ऐसे ही ढूंढे नहीं कि राजा थे कोई दूसरे गांव पूरा राज्य से कई लड़कियों को बुलाकर सब उसमें से किसको चुन लेते थे, ऐसा नहीं किया इन्होंने कि उपयुक्त तो पत्नी प्राप्त करने के लिए किसको तपस्या किया, ब्रह्मा जी को तपस्या किया कि ब्रह्मा जी को उन्होंने तपस्या की है। लेकिन पहले जैसे हम चर्चा किए थे कि भगवान विष्णु को भी कोई 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 भी तपस्या किया पत्नी प्राप्त करने के लिए, वो हैं महाराज सॉरी कर्दम मुनि ने ब्रह्मा जी के आदेश लेकर गृहस्थ आश्रम में जो प्रवेश करना चाहे तो ये पत्नी प्राप्त करने के लिए वो भगवान को तपस्या किए थे, लेकिन यहाँ पर अग्निद्र ने ब्रह्मा जी को तपस्या कर रहा था क्योंकि इसकी इच्छा था कि पत्नी कहीं प्राप्त करना, एक सुंदर पत्नी को योग्य कन्या को प्राप्त करके उसकी पत्नी रूप में स्वीकार करना, यही उसकी अंतकरण की अभिलाषा था। तपस्या तक मतलब तपस्या इसी के लिए करते हैं, साधारणतः तपस्या किसके लिए करते हैं, भगवान को प्रसन्न करने के लिए। भुक्तारंग यज्ञ तपस्या सर्वलोक महेश्वर, सारे यज्ञ तपस्या की एकमात्र भुक्ता भगवान श्री कृष्ण है, और यदि कोई उनको तपस्या करके ही अपनी इच्छा पूर्ति करना चाहता है तो सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। लेकिन गीता में भगवान कहते हैं कि जो लोग विशेष रूप में कामनाएं भौतिक कामनाएं भरे रहते हैं वो भगवान के शरण में नहीं जाते हैं। कामस्तस्तय हुत ज्ञान प्रपद्यन्ते अन्य देवता, अन्य अन्य देवताओं के पास में जहाँ जाते हैं, क्यों जानते हैं कि भगवान से कोई भौतिक इच्छा के वाले वर को प्राप्त करना इतने आसान नहीं है, वरन देवी देवताओं के पास में जाकर हमारे भौतिक इंद्रिय तृप्ति की साधन को प्राप्त करना सरल व सहज होता है। इसलिए अग्निद्र ने ब्रह्मा जी को तपस्या किया, ब्रह्मा जी को तपस्या किए, ब्रह्मा जी देखे कि चलो ये इसका अभिलाषा अच्छा है, क्योंकि ब्रह्मा चाहते हैं कि सृष्टि का वृद्धि हो, लोक संख्या की वृद्धि हो, और देख रहे कि अग्निद्र ने तपस्या कर रहा है उसी उद्देश्य लेकर पुत्र को उत्पन्न करने के लिए गृहस्थ में प्रवेश करना चाहता। पहले तो ब्रह्मा जी ने बड़े परेशान हुए थे, कई लोग गृहस्थ जो सृष्टि के प्रारंभ से कुमारों को बोले थे सृष्टि करने के लिए, चार कुमारों को वो सीधे मना कर दिए, तो इसलिए नारद जी को कहे वो भी मना कर दिए, इसलिए बड़े समस्या में पड़ गए थे ब्रह्मा जी सृष्टि कार्य कैसे बढ़ाए। इसलिए उन्होंने स्वयंभू मनु और शत्रुपा को फिर भगवान के निर्देशन में उत्पन्न किए थे, और वो पति पत्नी के रूप में मानव जाति के सबसे पहला मनुष्य के रूप में ब्रह्मा जी के आदेश को पालन करके माँ स्वयंभू मनु ने दो पुत्र को जन्म किया, किसको, उत्तनपाद और प्रियव्रत। अब वही प्रियव्रत के पुत्र थे अग्निद्र, ये जब गृहस्थ आश्रम प्रवेश करना चाहते उपयुक्त तो पत्नी चाहते, ये बात को जब ब्रह्मा जी की समझ में आया वो बड़ा खुश हो गए, प्रसन्न हो गए कि अच्छा है ये मुझे सहायता करेगा सृष्टि कार्य को आगे बढ़ाने में। तो इसलिए उन्होंने अग्निद्र जो मंदराचल पर्वत में अपने कुटिया बनाकर आश्रम बनाकर वहाँ तपस्या कर रहा था, जंगल की फल मूल सत्वगुणी आहार खाकर तपस्या करता था। तो ब्रह्मा जी ने उनके पास में एक योग्य कन्या को भेजे। किसको भेजे? पूर्वचिति। पूर्वचिति नाम की जो कन्या जो कि ब्रह्मा जी की दरबार में वहाँ रहकर नृत्य करती थी, विशेष रूप में जितने भी ब्रह्मा जी के मनोरंजन के लिए ब्रह्मलोक में निवास करके ही नृत्य गीतादि करते थे, उनमें से ये सर्वोत्तमा थी। कौन? पूर्वचिति। इसलिए पूर्वचिति को ब्रह्मा जी ने बुलाकर कहे कि तुम जाओ मंदराचल पर्वत में जाकर जहाँ पर अग्निद्र तपस्या कर रही, उसकी इच्छा ही पत्नी प्राप्त करने के लिए तपस्या कर रहा है, इसलिए तुम जाकर उसकी पत्नी का भूमिका निभाओ। इसलिए ब्रह्मा जी ने ऐसे कहकर भेजे थे पूर्वचिति को। इसलिए ब्रह्मा जी के आदर्श प्राप्त करके ही पूर्वचिति वहाँ पर आई थी, और आकर अग्निद्र के आश्रम में प्रवेश करके ही जो सन्निकट में जाने लगे जहाँ पर अग्निद्र बैठे थे, एक आसपास में जाकर वहाँ पर स्त्रियोचित जो विलक्षण अपने शरीर की अंग भंगी के द्वारा उनको आकर्षित करने के लिए प्रयास किया। कौन? पूर्वचिति ने। तो इसलिए जो अर्ध नेत्र अर्ध उन्मीलन नेत्र में बैठे हुए तपस्या ध्यान कर रहे थे, तो उनको दिखाई पड़ता था कि कोई पास में किसी लड़ा है, उसके घुंघरू की शब्द भी सुनाई पड़ा पहले, आस्ते आस्ते नजर भी गया, देखिए कि ये तो कोई है। लेकिन प्रारंभ से जैसे पहले हम वर्णन श्रवण कर चुके हैं कि अग्निद्र को ये पता नहीं लग रहा था कि ये बालक है या बालिका है। बहुत तो सुंदर थी लेकिन उसको प्रारंभ से कुछ ऐसे पता नहीं लग रहा था, क्योंकि तपस्या करने के कारण उसकी मति पूरा शुद्ध हो गया था, तो भी उन्होंने पहचान नहीं पा रहा था कि बालक है कि बालिका है। इसलिए पिछले श्लोक में हम देखें कि पूर्वचिति ने क्या करने लगे, एक गेंद लेकर खेलने लगे। जो मोहिनी मूर्ति को देखने के लिए शंकर जी की इच्छा हुई थी, तो भगवान ने कैसे कि ऐसे ही कहे वो आकर्षित करने के लिए शंकर को, शिव जी को, तो उन्होंने भी यही किया था। एक गेंद लेकर देख रहे थे, पहले तो भगवान ने मना किया शंकर जी, आप ऐसा रूप क्यों देखना चाहते हो, मेरे मोहिनी रूप देखिए क्या करोगे आप, आपको देखने कोई फायदा नहीं है, देखोगे तो आप धैर्य धारण नहीं कर पाओगे। शंकर जी को मेरा क्या बिगड़ने वाला, क्यों मेरा पत्नी मेरे साथ में बैठा है, कौन, जिसको हम कहते माया देवी, कौन, दुर्गा देवी पार्वती, शंकर जी का पत्नी के रूप में बैठती, वो उनको कुछ बिगाड़ नहीं पाती है, उनके मति को माया में नहीं डाल सकती, और ये कौन करेगा आपका रूप को देखने से, ऐसे उनके घमंड था। तो इसीलिए भगवान ने थोड़े देर में ही देखते देखते एक स्त्री रूप धारण करके क्या खेलने लगे, एक गेंद को लेकर ऐसे खेलने लगे, और तिरछी नजर में देखने लगे किसकी तरफ, शंकर जी की तरफ है। शंकर जी धैर्य धारण नहीं कर पाए थे, उठ के भागे उनके पीछे, लेकिन ये भी इसी प्रकार अभिनय करने लगी। पूर्वचित ने एक गेंद को ले ली, गेंद लेकर ऐसे ही खेलने लगे, और उस समय वायु हवा बहता था, आस्ते आस्ते उन कपड़े भी इधर उधर बिखर रही थी, उसका केस के पास इसके बाल भी घुंघराले बाल सब खुल गए थे, और अधिक आकर्षित लग रही थी। इसलिए अभी अग्निद्र ने आकर्षित होने लगा, और उनके शरीर के अंग भंगे जब देखा कि हवा में कपड़े इधर उधर उड़ लेंगे, फिर उनको पता लग गया कि ये बालक नहीं, ये कौन है, बालिका है, स्त्री है। तो इसलिए उन्होंने इस श्लोक में कहते कि रूपंग तपोधन तपश्चरतांग तपघ्न हे तपस्विनी, तपोधन तपस्विनी, तुमने अभी पहले तब उसको बालक कहे कि मैंने पुंगलिंग में संबोधन करता, अभी से कहा अभी इनको स्त्रीलिंग में संबोधन करने लगे, क्योंकि ये तपस्विनी तुझे इतनी सुंदर रूप कैसे प्राप्त किया, और ये कारण क्या है, क्या तुम्हारा उद्देश्य, ऐसे सुंदर रूप धारण करने की उद्देश्य क्या है, क्योंकि साधारणतः ऐसे ही सुंदरियों की प्रकट होती है, कहीं तपस्या कर रहा था उस पास में आके पहुंचते हैं, किसी क्या उद्देश्य होता है, तपस्या को नष्ट करना है, साथ ही इंद्र कभी कभी भेजती है ऐसे अप्सराओं को स्वर्ग से, कोई तपस्या करता है तो विश्वामित्र की तपस्या को भंग करने के लिए आ गई एक अप्सरा, कौन है, मेनका आ गई थी, मेनका भी थोड़ा आके आसपास में नाचने लगे, तो फिर उनकी तपस्या तोड़ गई। हैं, कई तपस्वियों की चरित्र में हम यही देखते हैं, यदि कोई तपस्या करता है देवता लोग ने विशेष रूप में किसी सुंदरी अप्सरा को भेज देते हैं जाके उसके तपस्या को भंग करने के लिए। इसलिए अग्निद्र की ऐसे ही सोचने लगा कि हो सकता है कि तुम इसके कहाँ ऐसे सुंदर रूप धारण करके यहाँ विचरण कर रही हो, क्या तुम्हारा उद्देश्य क्या, क्या तुम तपस्या को भंग करने के लिए इधर आए हो, हैं तपस्वियों की तपस्या को भंग करने के लिए तुम कैसे सुंदर रूप प्राप्त हुआ, ऐसा सुंदर रूप क्यों प्राप्त हुआ तुमको। हम पुराण के कई पुराणों में इतिहास देखेंगे तो कई स्थान पर ऐसे ही सुंदरियाँ अप्सराएं आकर तपस्या को भंग करती हैं, कई तो इनके क्या उद्देश्य है ये पूछने लगा, क्यों आए हो इधर, तुम्हारे इतनी सुंदर रूप, तुम क्या किसी तपस्या की तपस्या को भंग करने के लिए इसे सुंदर रूप तुमको मिला है। लेकिन ऐसे तपस्या भगवान के पास भी ऐसा ही एक अप्सरा को स्वर्ग से भेज दिया था, कौन, इंद्र ने भेजा था, जब नरनारायण ऋषि वो भी बद्रिका आश्रम में तपस्या करते थे है नारायण ऋषि, तो वहां पर स्वयं भगवान ही नारायण ऋषि के रूप में तप सत्य युग की धर्म सिखाने के लिए तपस्या है वहां पर अवतरित हुए थे और वो तपस्या कर रहे थे। तो ये इंद्र को मूर्ख को सोचा कि ये भी कोई तपस्या शुरू कर रहा है, ये भी कोई मेरे पद पद ले लेगा, कुछ इसका उद्देश्य होगा, तो इसलिए वहां पर इंद्र ने भी कुछ भेजा था अप्सराओं को नृत्य करने के लिए। लेकिन यह अप्सराओं को नृत्य देखकर भगवान को भगवान मुस्कुराने लगे, हंसने लगे कि ये सब कैसे आए, भगवान के मुस्कुराने लगे, समझ गए इंद्र की क्या उद्देश्य है, इसलिए भगवान के शरीर से सब और सुंदरी अप्सराएं निकलने लगे, जो स्वर्ग से आए थे अप्सरा उनसे कई गुण की सुंदरी अप्सराएं निकलने लगे हैं। उनमें से एक अप्सरा थी कौन, उर्वशी, उर्वशी भी उनमें से एक थी। भगवान को भगवान के ऐसे कार्य को देखकर ये सब डर गए, सब आए थे भयभीत हो गए थे, देखिए अरे क्या होगा, अभी एक बार तो हमको ये भेजा था इंद्र ने तपस्या भंग करने के लिए, किसका है, शंकर जी का भी, जो कंदर माने के कामदेव स्वयं गए थे, रति गए थे और हम भी गए थे उनके साथ, तो वहां तो शंकर जी ने क्रोधित होकर तीसरे नेत्र में देखे तो कंदर्प को भी जला के राख बना दिए थे, अभी क्या होगा, ये तो और कोई है बड़े तपस्वी है, भयभीत हो गए रहे, कंप रहे थे भय से। तब फिर भगवान ने मुस्कुरा कर कहे कि तुम्हारा कोई दोष नहीं, तुमको भेजा कौन भेजा, इंद्र ने भेजा, इसलिए तुम्हारे पास में इतनी सुंदरी नहीं है अप्सरा, उसके पास इसमें से एक अप्सरा को मैं भेंट दे रहा हूँ, लेकिन इसको भेंट दे देना, इसको इंद्र को, कौन सा अप्सरा गया था, उर्वशी हैं, क्योंकि ये भगवान नारायण के ऋषि के आंखों से ही प्रकट हुई थी, तो वो बहुत सुंदरी, जितने भी स्वर्गों की अप्सरा इसको सबसे सुंदरी माना जाता है। तो कभी कभी ऐसे अप्सरा को भेजा जाता है किसको, तपस्या तोड़ने के लिए, हरिदास ठाकुर की तपस्या को तोड़ने के लिए भेजा था, कौन, रामचंद्र खान भी हैं भेजी थी, एक बहुत सुंदरी युवती वेश्या को भेजी थी, ये साधारण लगे इसकी तपस्या तोड़ना है, कोई यदि मैं कोई व्यक्ति तपस्या कर रहा है, क्योंकि हमारे सभी के अंदर में सुप्त रूप से काम वासनाएं बद्ध अवस्था में रहता है, लस्टी डिजायर्स रहता है। एक बार प्रभुपाद जी ने हवाई में समुद्र किनारे चल रहे मैंने वॉकिंग करते थे, लेकिन कई लोग आकर प्रणाम करते थे, बार बार सब आकर प्रभुपाद जी को प्रणाम करते थे, जानते नहीं अनजाने लोग सब आकर प्रणाम करते थे, प्रभुपाद जी कहे कि ये सारे मुझे क्यों प्रणाम कर रहे हैं, इतने लोग कभी मेरे को तो पहचानते नहीं, ये लोग युष्टना रहे यहाँ के लोग, ये मेरे मुझे क्यों प्रणाम करते हैं। तो कई लोग कई कारण बताया कि प्रभुपाद जी आप शुद्ध भक्त हैं, बहुत कुछ ऐसे इधर उधर बोले, लेकिन प्रभुपाद जी ने सेटिस्फाइड नहीं हुए। अंत में प्रभुपाद जी ने कहे कि बिकॉज आई हैव नो सेक्स डिजायर, मेरे पास में संभोग की इच्छा नहीं है, स्त्री संभोग की इच्छा नहीं है। यदि कोई व्यक्ति इसी से मुक्त हो जाता है, किससे, लस्टी डिजायर से, अपोजिट सेक्स के आकर्षण से मुक्त हो जाता है, वो व्यक्ति महान बनता है, उसके अपने आप लोग सम्मान करते हैं उसको, अपने आप लोग उसको सम्मान करने लगते हैं। रूपा जी कहे कि संसार में सभी लोग इसी बंधन में फंसे हुए हैं, स्त्री और पुरुष के आकर्षण में, ये लस्टी डिजायर के कारण ये 84 लाख जोनि में सारे जीवात्माएं घूम रहे हैं और कुछ कारण नहीं है। यदि कोई व्यक्ति इसी से मुक्त हो जाता है, इसी जौन आकर्षण से मुक्त हो जाता है, तो मुक्तात्मा बन जाता, वो सभी के लिए पूजनीय हो जाता है। तो इतनी होना कितनी आसान नहीं है। हम जितने भी ये रूम में बैठे हैं कक्षा में, किसी ना किसी डिग्री में सबके पास में आकर्षण है। किसी पर 90%, किसी के 80%, किसी 70%, किसी 50%, लेकिन ये आकर्षण होने के कारण हम बंधे हुए हैं। बद्ध जीवन का अर्थ क्या? हम बंधे हुए हैं। इसलिए बंधन का जो मुख्य रसी है वो है लस्टी डिजायर, जिसके माध्यम से माया भगवान की बहिरंग शक्ति हमको बांध के रखा है बहुत ये भौतिक जगत में, जिसी कारण से हम बार बार जन्म मृत्यु चक्र में भटकते रहते हैं। स्त्री आकर्षण हो गया पुरुष को, पूरा अगला जन्म उसको स्त्री का मिल जाएगा, स्त्री का पुरुष का आकर्षण रहा, अगला जीवन में क्या मिलेगा? पुरुष बन जाएगा, कभी स्त्री का शरीर कभी पुरुष का शरीर, हाँ ऐसे घूमते रहेंगे यदि हम परस्पर में ये जौन आकर्षण को समाप्त नहीं करेंगे। इसलिए प्रभुपाद जी कहे कि ये सारे लोग मुझे सम्मान करते, मुझे प्रणाम करते, किसी लिए आई हैव नो सेक्स डिजायर, मेरे पास में जौन इच्छा का संभोग इच्छा नहीं है। और प्राय सभी के पास में किसी ना किसी डिग्री में ये रहता है। जैसे आप बीरबल और अकबर की कहानी सुने, बीरबल अकबर ने पूछा बीरबल, कह के देखो कब तक ये हमारे मन में, एक पुरुष के मन कब तक लस्टी डिजायर रहता है, उपभोग करने की इच्छा कब तक रहता है? तो बीरबल ने कहा कि कब तक? मरते तक, अंतिम समय तक रहता है। अकबर ने कहा कि ऐसे कैसे संभव होगा, यदि कोई बद्ध जीव है उसको रहेगा अंतिम समय? बोला देखो ऐसे कैसे हो सकता है, कोई बुढ़ा हो जाएगा 70 साल मर जाए तो उसका मन तो कोई उसका इंद्रिय तो शिथिल हो गया, कैसे सेक्स डिजायर रहेगा उसके पास? लेकिन बीरबल ने कहा कि चलिए आप आज थोड़ा हॉस्पिटल का प्रदर्शन है क्या परिदर्शन करेंगे आपको, चलिए और आपका सबसे छोटा लड़की जो बहुत सुंदरी लड़की है उसको भी साथ में लेकर चलिए, राजकुमारी को लेकर साथ में चलिए। अरे एक आदमी ने, बुढ़े आदमी ने मर रहा था, 95 ईयर्स एज, मरने वाला अभी, अब घोषणा हो गया अभी बादशाह परिदर्शन में पधार रहे हैं हॉस्पिटल का, और अकबर जा रहे थे, बीरबल अकबर जा रहे थे, उनके पीछे वो लड़की भी जा रही थी राजकन्या। अकबर गए उसको कोई आकर्षण नहीं हो, बोलेगा बादशाह है। लेकिन जब थोड़ा सा उनके घुंघर के शब्द में सुनाई पड़ा, किसका? राजकन्या की। मरते हुए मर रहा था वो, राजकन्या के मुख को देखते देखते वही शरीर त्याग। ये आकर्षण कि सुंदरी स्त्री को देखना व सुंदर पुरुष को देखना, ये परस्पर में आकर्षण रहता है अपोजिट सेक्स में अंतिम समय तक, यदि वो मुक्तात्मा नहीं हुआ, यदि भगवान की भक्ति करके भगवान की चरणारविंद संपूर्ण समर्पित नहीं हुआ, शरणागत नहीं हुआ, भगवान की बहिरंग शक्ति किसको छोड़ता नहीं है, है? इसलिए भगवान कहते कि मम माया दुरत्या। लेकिन जब तक माम जे प्रपद्यन्ते माया में ताम चरंती ते, जो संपूर्ण रूप में मेरी शरण में आता है, मेरी शरणागत हो जाता है, वो मेरी बहिरंगा शक्ति के प्रभाव से मुक्त हो जाता है। लेकिन यहां पता हम देख रहे कि अग्निद्र ने जान बुझ कर इसमें फंसना चाहता था, वो पत्नी चाहती थी, पत्नी प्राप्त करने के लिए ही तपस्या कर रहा था, है? इसलिए उन्होंने कहा था कि हे तपस्विनी, तुम इतने सुंदर रूप क्यों धारण करके आई हो? लगता है कि तुम किसकी तपस्या तोड़ने के लिए आए, तपस्या भंग करने के लिए रूप धारण किया, लेकिन तुमको इतनी अच्छे रूप है किए न तपस्या भवत उपलब्ध, इतनी सुंदरी रूप तुझे कैसे प्राप्त हुआ? कौन सा तपस्या किया तुम इस रूप को प्राप्त करने के लिए, जो कि किसी को भी आकर्षण करने वाली तुम्हारी जो रूप है इसको कैसे तुम प्राप्त किया? मैं चाहती हूं कि चतुर तप महर्षि मया सह मित्र मह्यं, मैं तुमको मेरे मित्र के रूप में स्वीकार करता हूं, इसलिए चलो दोनों बैठ के तपस्या करेंगे, साथ में तपस्या करेंगे। ये एक मैंने दूसरे कामी पुरुष की तरफ उत्कट काम ऐसे डायरेक्ट प्रकट नहीं करा, लेकिन बोल रहा है कि तुम भी जो मेरे साथ आ जाओ और दोनों मिलकर क्या करेंगे, तपस्या करेंगे। बोले कि तपस्या करेंगे आओ, लेकिन फिर भी सोचते हैं कि तपस्या करेंगे, लेकिन मैं तपस्या कर रहा था किसके लिए? सुंदर पत्नी प्राप्त करने के लिए ब्रह्मा को तपस्या करता है, इसीलिए सोच रहे किंबा प्रसिद्धति सबई भवभावनों में, मैं जो ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए भवभावन को ब्रह्मा को तपस्या कर रहा था, ये भी हो सकता है कि ब्रह्मा जी ने तुझे मेरे पत्नी बनने के लिए मेरे पास भेज दिए, ये भी सत्य था। इसलिए अग्निद्र ने अपने भावना को श्लोक में पूरा व्यक्त करते हैं, कभी सोचते कि साथ में बैठ के तपस्या करेंगे, कभी सोचते कि ये माया के रूप है, ये ऐसे रूप धारण करके आकर तपस्या भंग करने के लिए आई है, हैं? और कभी सोचता है कि इतनी सुंदर रूप इसको कैसे मिला, हैं? ऐसे भी ये भी कोई तपस्या किया होगा, नहीं तो इतनी सुंदरी कैसे बन गई। और कभी सोचते कि नहीं नहीं अब वो भी सुंदरी है, मैं भी कुछ कम नहीं हूँ, दोनों बैठ के साथ में तपस्या करेंगे। लेकिन बाद में फिर सोचने लगा कि नहीं, ये भी हो सकता, मैं तपस्या किसके लिए कर रहा था, सुंदरी एक पत्नी प्राप्त करने के लिए ब्रह्मा जी को तपस्या कर रहा था, हो सकता कि ब्रह्मा जी प्रसन्न होकर मुझे ये कन्या को भेज दिए मेरी पत्नी बनने के लिए। इस प्रकार उन भिन्न भिन्न चिंतन इनके मन में आने लग रहा है, अलग अलग सोच रहा है, अलग अलग व्यक्त सोच रहा। तो इसलिए प्रकृत में यदि ब्रह्मा जी की कृपा नहीं होता है, प्रभुपाद जी कहते किसी को पत्नी प्राप्त नहीं होता है, ब्रह्मा जी ही सूत्रधार है, क्योंकि इन सृष्टि को आगे बढ़ाना, सुंदर संतानों की संतति को उत्पन्न करना, ये सदा ब्रह्मा चाहते हैं सृष्टि के जैसे बढ़े है? वो ऐसे ही भूत प्रेत को जन्म करना नहीं चाहते, लेकिन अच्छे संतति को उत्पन्न हो समाज में, ये भी ब्रह्मा जी की इच्छा है। जब वो चाहते थे तो उत्पन्न करने के लिए, लेकिन जब चारों कुमार ने मना कर दिया, नारद मना कर दिया, फिर रुद्र जो ब्रह्मा जी क्रोध से उत्पन्न हुआ, रुद्र ने फिर कहे कि तुम बोला हाँ मैं पिताजी आपका सब काम करूंगा, आपका इच्छा मानूंगा, अब तो उन्होंने फिर क्या सृष्टि करने लगा, सो भूत प्रेत है, सो अद्भुत सो उत्पन्न, और सो ब्रह्मा जी को खाने के लिए भागे, जो ब्रह्मा जी को पकड़ने के लिए, ब्रह्मा जी ने बोला बंद करे ये सृष्टि है, बंद कराए। तो इसलिए फिर उन्होंने स्वयंभू मनु को सृष्टि किया, स्वयंभू मनु ने अच्छे संतति को उत्पन्न किए, और स्वयंभू मनु के वंश में ही ये आए कौन, अग्निध्र। इसलिए ब्रह्मा जी ने चाहते कि ये भी सृष्टि कार्य में मदद करें, हाँ, और इसलिए उन्हें पूर्वचिति को भेजे, जाके तुम उसकी पत्नी का भूमिका निभाओ। अब वो पधार गई अभी, लेकिन प्रभुपाद जी कहते कि यदि ब्रह्मा नहीं चाहते हैं कि इसको योग्य पत्नी भी मिलना संभव नहीं है, इन्होंने ही भी यदि वो भगवान को तपस्या कर रहे थे कर्दम नहीं, लेकिन ब्रह्मा जी ने ही आकर स्वयंभू मनु को कहे, उनको तो कहे कि ये तुम्हारे पत्नी, तुम्हारे जो कौन कन्या की पति कौन बनेगा, ये कर्दमुनि बनेंगे, उनको लेकर वहाँ पर जाओ, कर्दमुनि के तपस्या स्थल में जाओ और उनको अर्पण करो कन्या को। भगवान भी ये बात आके उनको कह दिए थे पहले, हाँ। यदि किसी को पत्नी चाहिए, साधारणतः गोपियाँ लोग ने किसको प्रार्थना करते थे पति के लिए, कात्यायनी को, कात्यायनी व्रत करके कात्यायनी को प्रार्थना करते थे कि हाँ कि कात्यायनी महामाये महाजोगिनी अधीश्वरी नंद गोप सुतंग देवी पतिंग में कुरुते ममा, मई नंद गोप का लाला कितनी सुंदर है, इसको हमारा पति बना दो, तुम सब कुछ कर सकती हो, महाजोगिनी अधीश्वरी तुम सब कुछ कर सकती, इसलिए नंद की लाला को हमारा पति बना दो, तो कात्यायनी पूजा कर। लेकिन यदि किसको पत्नी चाहिए तो फिर यहाँ पर करके प्रभुपाद जी कहते ब्रह्मा जी की कृपा होने से पत्नी, और ये ही शादी कराते हैं, यहाँ तक इन्होंने राधा कृष्ण का भी शादी कराए हैं, भांडीर वन में है ना, आज भी राधा कृष्ण की शादी मंडप है, तो राधा कृष्ण को शादी कराए कौन, शादी कराया ब्रह्मा जी ने ही शादी कराए हैं, वही पुत्र ने पिता बनकर कन्या दान की, राधा रानी को दान की है कृष्ण। तो इसलिए ब्रह्मा जी की जो कृपा होने से योग्य पत्नी मिलता है, क्योंकि उन्होंने आकर शादी कार्य होता तो कहीं वो बड़ा प्रसन्न होते। इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं आजकल भी, आज भी यदि कोई शादी का कार्ड छुपाते हैं, शादी कार्ड छुपाते हैं, उसका पर किसका छपी रहता है, प्रजापति, मेरे को देखा नहीं कोई शादी कार्ड मेरे पास तो आया नहीं कभी, लेकिन जो आप लोग पास इन्विटेशन कार्ड आया होगा शादी का है, तो उसका पर ब्रह्मा जी की छवि रहता है, प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, सच है क्यों, प्रभुपाद जी लिख रहे झूठ क्यों लिखेंगे, प्रभुपाद जी कहते हैं आज भी शादी के कार्ड के ऊपर ब्रह्मा जी की चित्र रहता है, वो प्रजापति है, प्रजाओं को वृद्धि करना उनकी, शादी नहीं करेगा तो प्रजा कैसे वृद्धि होंगे, शादी करेगा तभी तो संतान को उत्पन्न होगा तभी, तो इसलिए संसार को वृद्धि के बाद गृहस्थाश्रम से प्रवेश करने के लिए पत्नी चाहिए, तो अग्निध्र की तरफ ब्रह्मा जी की पूजा करना, यदि वो कली युग में ब्रह्मा जी की पूजा करना मना है, ये केवल राजस्थान में एक है ब्रह्मा जी का तीर्थ है, कौन सा, पुष्कर तीर्थ, जहाँ ब्रह्मा जी ने तपस्या किया था सृष्टि के प्रारंभ में, पुष्कर, तो वहाँ पर ब्रह्मा जी के मंदिर है, लेकिन राजस्थान में और भी बना दिए कई ब्रह्मा जी मंदिर, इधर उधर बना हुए हैं। ये ब्रह्मा जी को तपस्या किस लिए करना, नहीं करना चाहिए, नहीं किस लिए पूजा करने मना इस युग में, कौन जानता है, किस लिए ब्रह्मा जी की पूजा करने के लिए मना गया शास्त्र में, मना किया गया है? है? क्योंकि नारद जी के अभिशाप, नारद जी ने जब ही मना कर दिए, मैं आपको ये सृष्टि प्रजा सृष्टि करने के लिए मैं गृहस्थ आश्रम प्रवेश नहीं करने वाला हूँ, मैं तो मेरे बड़े भाइयों को अनुसरण करूंगा। किनको? सनक सनातन सनंदन सनत कुमार, ये मेरे बड़े भाई है, आपसे पहले ही उत्पन्न हुए, आप तो उनको नहीं कुछ बोल रहे हैं, मुझे क्यों बोल रहे हैं, मैं उनको फॉलो करूंगा, मैं सृष्टि में नहीं गृहस्थ आश्रम में प्रवेश नहीं करने वाला हूँ। तो ब्रह्मा जी को बड़ा क्रोध आया, बोले सभी ऐसे ही बोलते रहेंगे तो सृष्टि कैसे आगे बढ़ेगा। तो उन्होंने कहे कि चल तुझे मैं एक पत्नी स्वीकार करके सृष्टि को आगे बढ़ाने के लिए, मुझे सहायता करने के लिए बोल रहा हूँ, नहीं सुन रहा, तुझे सौ स्त्रियों के साथ घूमना पड़ेगा। इसलिए फिर नारद मुनि को आकर उपबरहण गंधर्व के रूप में आए और सब सुरंग साथ में घूमते थे, घूमते घूमते फिर जब म्यूजिक बजाते थे, एक बार नारद जी की उनको इन्विटेशन आया ब्रह्मा जी के दरबार में म्यूजिक पटी, और जो गए वहाँ पर नारद जी ने जो उपबरहण गंधर्व बने थे, लेकिन उनके आकर्षण एक विशेष अप्सराओं के प्रति था, तो जब म्यूजिक बजाते थे तो बिना बजाते उनको ठीक से ताल नहीं मिलता था। ब्रह्मा जी ने क्रोधित हुए, तू ये स्वर्गलोक में गंधर्व बन के रहने की भी योग्य नहीं है, जा दासी पुत्र बन जा, शूद्राणी के पुत्र बन के मृत्यु लोक में चले जा। हैं इस प्रकार ब्रह्मा जी, लेकिन जब पहले जब ब्रह्मा जी ने नारद जी को अभिशाप दिया कि तुम सौ एक पत्नी स्वीकार नहीं कर रहा, अभी सौ स्त्रियों के साथ घूमते रहोगे, ये बात कहने से नारद जी को थोड़ा क्रोध आया। उन्होंने भी रोते रोते कहे कि देखो पिताजी, आप मेरे पिता हो, पिता न सस्या जननी न सस्या, पिता का काम है अपने पुत्र को भगवत धाम पहुंचाने के लिए मार्ग बताना, मैं तो भक्ति करके भगवान धाम जाना चाहता था और आप मुझे अकारण में तपस्या ऐसे अभिशाप दिए, इसीलिए जगत में कोई भी आपको पूजा नहीं करेंगे। ऐसा जो पिता है अपने पुत्र को भगवत धाम जाने के लिए रुकता है, भक्ति करने में रुकता है, तो ऐसे पिता को कोई भी नहीं पूजेगा, ऐसे व्यक्ति तुमको जगत में कोई भी पूजा नहीं करेगा। से ब्रह्मा जी अपूज्य माने जाते हैं इस कलि संसार में, फिर भी कहीं एक जगह में उनको पूजाने का पूजा जाता है पुष्कर तीर्थ में, फिर भी प्रभुपाद जी कहते कि ब्रह्मा जी की काम है जोड़ना स्त्री पुरुषों को शादी करा के, शादी के माध्यम से अवैध संघ के लिए नहीं, ब्रह्मा जी इसको प्रोत्साहित नहीं करते हैं, किसको? अवैध संघ को। इन्होंने यज्ञ यज्ञ की मारे प्रजापत्य विधि से यज्ञ के माध्यम से यज्ञ में ही ये भी एक विवाह को भी एक यज्ञ कहते हैं, विवाह यज्ञ भगवान के अनुमोदन के साथ यज्ञ में ही स्वीकार करना पति पत्नी के, कोर्ट में जाकर नहीं। तेरा मेरा राजी क्या करेगा काजी, इसको ब्रह्मा समर्थन नहीं करते, न भगवान ही समर्थन करते, ये नहीं। विवाह के द्वारा गुरुजनों के वयोज्येष्ठ व्यक्ति की सम्मति के साथ यज्ञ में भगवान विष्णु, यज्ञ अर्थात भगवान विष्णु, यज्ञपति भगवान विष्णु के सामने जैसे हम दीक्षा भी लेते हैं, उसी प्रकार यज्ञ में ही पति पत्नी पानी ग्रहण करते हैं एक दूसरे का, माने हाथ इनको हाथ रख के मंत्र उच्चारण करके, फिर इनको ब्राह्मण नहीं पति पत्नी के रूप में सबके सामने विवाह कराता है। इसी प्रकार राधा कृष्ण का भी विवाह ब्रह्मा जी ने कराया, वो जानते बाद में लोग क्रिटिसाइज करेंगे नहीं तो, इसलिए जो छोटे बच्चे थे भी कन्हैया छोटे बच्चे थे, और एक बार नंद महाराज ने इनको गोद में लेकर गए भांडीरवन में घूमते घूमते गाय के पीछे, अब भगवान की इच्छा से हर टूटा तुरंत झड़ तूफान बात्या आ गया, और कन्हैया तो डर कर ब्रह्मा जी को गले को पकड़ पिताजी को गले को पकड़ के रहे नंद महाराज के, नंद महाराज सोचते मैं कैसे बचाऊं ये झड़ तूफान से, मेरी लाला को कैसे बचाऊं, और कृष्ण भी भयभीत होकर अपना गले को ऐसे ही पकड़ के रखे थे। तो उसी समय राधा रानी को पधारी हैं, देख रहे दूर से एक अपूर्व ज्योति है, ज्योतिर्मय आलोक उनकी तरफ आ रहा है, सन्निकट में आते ही देखे कि नंद महाराज उसी ज्योति के बीच में कौन है, ये तो वृषभानु नंदिनी है, पहचान गए। तो उनको सब गर्गमुनि के सारे बात याद है, गर्गमुनि ने कहे थे कि ये वृषभानु नंदिनी जो है ये आद्याशक्ति है, कोई साधारण बालिका नहीं है, ये तुम्हारे कृष्ण की कृष्ण की योग्य कन्या है। तो देखिए कि भयभीत थे, लेकिन राधा रानी तुरंत हाथ ऐसे आगे बढ़ाकर मांग रही थी, नंद महाराज ने अपने लाला को उनके हाथ में दे दी। कन्हैया को जब राधा रानी ने पकड़े, कहे कि नंद महाराज कहे कि हे देवी, मैं तुम्हारी बारे में तुम्हारी महिमा को सभी सुना हूँ गर्ग मुनि की मुख से, नारद मुनि की मुख से, इसीलिए तुमने इस लाला को, मेरे लाला को लेकर उसकी माँ के पास में पहुंचा दो। ये कहकर नंद महाराज ने फिर अपने गाय को सुबह इकट्ठी करने के लिए लगे हैं, क्योंकि सबको गाय को लेकर फिर जाना। तभी फिर उसी थोड़ा राधारानी इधर घूम के नंद महाराज उस स्थान से जो दूर चला गया, फिर भांडीर भट्ट के पास में पहुंचे। राधारानी ने उसके उस कन्या को हाथ में लेकर पहुंचे, लेकिन तुरंत ही कन्या जब आ गए भांडीर भट्ट के नीचे, वो किशोर बन गए हैं, बालक नहीं थे, किशोर बन गए। तुरंत ही वो भी जैसे किशोरी थी राधा, वो भी किशोर बन गए। भगवान की इच्छा से तुरंत ही वहाँ कौन प्रकट हुए? ब्रह्मा जी प्रकट हुए। अब ब्रह्मा जी प्रकट होकर दोनों का विवाह कराए हैं भंडीर वन में। इसलिए ब्रह्मा जी का आज भी उस स्थान है जहाँ पर ब्रह्मा जी ने राधा कृष्ण को विवाह कराए थे, राधा कृष्ण के विवाह मंडप हैं। नहीं बात नहीं, इसलिए कोई जो जानते नहीं है क्रिटिसाइज करते कि हैं दूसरे पत्नी के, राधा तो दूसरे का पत्नी था, कृष्ण उसका संपर्क किया रखा है। मूर्खों को पता नहीं है इनकी विवाह किसी के साथ, राधा रानी के विवाह और किसी के पहले से ब्रह्मा जी ने किए थे। दूसरे जितने भी गोपियाँ, इनकी शादी भी कृष्ण के साथ हुआ था, दूसरे के साथ नहीं है। ब्रह्म विमोहन लीला में जिस साल ब्रह्मा जी ने चुराए थे किसको? ग्वाल बालों को और बछड़ों को। और एक साल जो बीत गया था, वो एक साल स्वयं ग्वाल बाल के रूप में कौन विस्तारित किया? हो स्वयं भगवान ने ही विस्तारित थे। और उसी साल ये सभी गोपियों की शादी हो गई थी, और जो ग्वाल बालों की शादी हुआ, लेकिन वो ग्वाल बाल नहीं थे, वो सब स्वयं कृष्ण ही थे। तो इसलिए भगवान ने कभी अनैतिक कार्य नहीं करते, कोई ऐसा नहीं अनैतिक है। इसलिए विवाह ये ब्रह्मा जी की है, कोई शादी करता तो ब्रह्मा खुश होते, लेकिन अवैध संग में नहीं, अवैध विवाह को ब्रह्मा जी अनुमोदन नहीं करते है। ये नहीं तेरा मेरा राजी क्या करेगा, ऐसा नहीं। यहाँ पर अग्निद्र की शादी हो रहा, तो फिर ब्रह्मा जी ने इसको भेजे, इसका ब्रह्मा जी का अनुमोदन है, पूर्वचिति को जाओ तुम इनका पत्नी बनो है, ये चाहता है सृष्टि को बढ़ाने के लिए, पुत्र इच्छा कर रहा है, इसलिए तुम जाकर इस भूमि इसका पत्नी का भूमिका निभाओ है। नहीं तो ऐसा नहीं कि हम किसी को देख लिया बस है, तो प्रसाद हो गया है? मैं देखा वो भुवनेश्वर में है, एक गौर भाई हमारे भक्त भुवनेश्वर का था, इधर अखंड कीर्तन में जैन किया था, ब्रजमंडल परिक्रमा में गया कार्तिक महीना में, महेंद्रपुर से मना कर रहा था फिर भी गया, लेकिन गया और जाके उधर एक है एक इटालियन लड़के से उसके साथ हो गया संपर्क है, गोरे चमड़ा बस। वहाँ तो भुवनेश्वर से आया था, तो बोला कि नहीं मैं भक्ति करूँगा ब्रज, ब्रज मुझे सादा बड़ा ध्यान आ रहा है, ब्रज में भक्ति करूँगा, यहाँ आकर फंस गया उसके साथ और उसको लेके साथ में गया भुवनेश्वर। कहा कि महाराज ये लड़की के साथ में शादी करने, हम दोनों का इच्छा है, हम सब ठीक हो गया। महाराज उसको समझाए, बहुत समझाए, ऐसा करना ठीक नहीं है, तुमको शादी करना है तो मैं व्यवस्था करूँगा, अच्छे गांव लड़की जो अच्छे परिवार में, तुमको डिसाइड करूँगा मैं, इसको व्यवस्था करूँगा, इस लड़की से नहीं, तुम जाओ। लेकिन ये बोला नहीं, 7 दिन तक जब जिद ही पकड़े रहा ना, मैं इसी को ही शादी करूँगा, इसका साथ मेरा सब हो गया ऑलरेडी है, पहले हो चुका है संपर्क, इसी को ही शादी करना है। महाराज जब बार बार समझाए नहीं समझा, क्योंकि ये मेरा शिष्य पकड़ो, दो ब्रह्मचारी बोले 8-10 बोले इसे पकड़ो, इसको सेविंग करके सिखा पिखा काट के और इसे जपमाला भी ले लो, छोड़ दो इसको मंदिर के बाहर, ये मेरा शिष्य नहीं, जो मेरे शासन में नहीं रहता वो मेरा शिष्य नहीं, भागा दो। जो उसको जब मंदिर से भगा दिए, वो लड़की जो शादी करने वाला थी वो भी शादी नहीं की, वो भी भाग गए, देखा कि इसको से निकाल दिया इसको, वो भी भागे, बोला नहीं मैं ही तुझे शादी नहीं करूंगा, तुम तो अभी सिखा पे कभी गया सब है, गुरु त्याग दिया तुझे, मैं नहीं शादी करना, वो भाग गए। तो इसलिए शादी करना ठीक है, लेकिन क्या गुरुजनों के भी अनुमोदन होना चाहिए, आपके पिताजी गुरु बा जो आप उच्च पद में हैं वो लोग आपको अनुमोदन करें कि ठीक है हाँ तुम दोनों शादी कर सकते हो। और शादी ऐसे जो कोर्ट में नहीं करने का नहीं कहा जाता शास्त्र में, शादी कहाँ वाला यज्ञ में, भगवान विष्णु को साक्षी रखकर हैं, यज्ञ माने भगवान विष्णु हैं, तो शादी की शादी को शादी कहा जाता, नहीं तो ये नहीं है तेरे मेरे राजी क्या करेगा काजी, ये ज़्यादा दिन चलने वाला नहीं है, नहीं ये शादी ज़्यादा दिन चलता नहीं है ना, इसमें कुछ किसी का कब भलाई होता है, बाद में फिर समस्या सृष्टि होता है। लेकिन यहाँ पर तो अग्निद्र की विवाह का अनुमोदन किसकी था, ब्रह्मा जी की था, इसलिए ब्रह्मा जी ने स्वयं एक कन्या को चुनकर भेजे अग्निहोत्र के पास। अभी आगे पढ़ते रहेंगे इनके दोनों का कैसे विवाह होगा, फिर संतानों की उत्पन्न होगी। यदि विवाह होगा, विवाह इसलिए करते हैं, किस लिए विवाह करते हैं, पुत्रार्थे भार्जिया, एक भार्जिय किस लिए स्वीकार किया जाता है, पुत्र संतान को उत्पन्न करने के लिए। अग्निहोत्र की वो इच्छा था कि पुत्र को उत्पन्न करना। शादी इसलिए नहीं होता कि इंद्रिय तृप्ति के लिए, इंद्रिय तृप्ति के लिए शादी किया जाता है नहीं, ये अनुमोदन नहीं है शास्त्र से, वो नर्क में जाएगा। इंद्रिय तृप्ति के लिए शादी नहीं किया जाता, शादी किया जाता है एक पुत्र को उत्पन्न करने के लिए, कृष्ण भावना भावित संतान को उत्पन्न करना है। इसलिए यदि भक्त प्रभुपाद कहते हैं कि यदि पत्नी भक्त है और पति भी भक्त है, दोनों मिलकर कृष्ण भावना में आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन इनकी यदि मन में केवल इंद्रिय तृप्ति की भावना होगा, आजकल जैसे करते हैं नहीं, अरे बच्चा जन्म हो जाएगा तो फिर इंद्रिय तृप्ति ठीक से नहीं होगा, बच्चा जन्म के बंद करेंगे, बच्चा जन्म नहीं होना चाहिए, इंद्रिय तृप्ति चलते रहे लेकिन बच्चे को नहीं जन्म देंगे, ये अनुमोदन नहीं है। इसलिए पुत्रार्थे भार्जिया, एक भार्जिया को स्वीकार किया जाता है जब ये हमारा मन में एक पुत्र संतान को उत्पन्न करने, कृष्ण भावना भावित संतान को उत्पन्न करने के लिए इच्छा हो, नहीं तो देख लिया इसको, उसको उसका नजर आया वो बस हम दोनों अच्छा आनंद लूटेंगे, इंद्रिय तृप्ति करेंगे मैथुन के माध्यम से, ये बहुत गलत है, इसको अनुमोदन नहीं है, दोनों ही नर्क में जाएंगे। ब्रह्मा जी ने तभी अनुमोदन किया जब अग्निद्र की शादी को अनुमोदन अनुमोदन करके उसको ये पूर्वजति को भेजे, क्योंकि अग्निद्र मन में यही इच्छा था एक पुत्र संतान को उत्पन्न करके स्वयं राज्य भार उसको देकर वो पितरों के पास जाना चाहता था, मैं स्वयं भू मनु के पास है। लेकिन इसलिए इसी धारणा से ब्रह्मा जी के अनुमोदन बा गुरुजनों के अनुमोदन के साथ शादी होता, आत्मे अपने इच्छा से नहीं है, ये ज्यादा समय टिकने वाला नहीं होता है, है? कोई प्रश्न है, किसी की कोई प्रश्न है? और प्रभुपाद जी कहा करते थे कि शादी करना है अपने शिष्य को, कहते थे शादी करना है तो 30 साल के पहले, 30 साल के अंदर शादी कर लेना, आफ्टर 30 साल। मैं देखा लोकनाथ महाराज एक बार यज्ञ करके दिखा दे रहे थे, एक भक्त ने दिखाया तो उसको बोले कि तुम क्या शादी बनना गृहस्थ बनना है, कुछ महाराज हटा कहे कि नहीं शादी बनना है तो गृहस्थ बनना, 30 साल के ये प्रभुपाद जी के इंस्ट्रक्शन है, 30 साल के पहले, 30 साल क्रॉस कर गया तो फिर 60 साल के पर में तो 30 साल भजन के लिए रखना, भगवान की भक्ति के लिए है। हाँ ऐसे नहीं बुढ़ापा में शादी करना क्या फायदा है उसकी, है ऐसे शादी अनुमोदन नहीं होता है। कोई प्रश्न है किसकी? बोलो, माइक माइक्रोफोन है क्या, माइक जल्दी। जो भक्त है तो किसको फॉलो करता है, जो विष्णु भक्त है तो वो किसको फॉलो करेगा, और कौन भगवान को शादी करने के लिए कौन प्रार्थना किया था कन्या के लिए है? अभी दूसरा उदाहरण दिया गया ना, जो भगवान को शरण में गया था इसको पत्नी प्राप्त करने के लिए कौन था, कर्दम मुनि। भगवान की शरण में जाने से भगवान सब कुछ देते हैं, अकाम सर्वकाम मुख्य काम उदारधि तीव्रेण भक्ति जोगे न जजेत पुरुष परम, परम पुरुष भगवान की शरण में जाना। लेकिन यहाँ पर ये अग्निद्र की ये पुराना भी ज्यादा पीढ़ी नहीं आया था, अग्निद्र को भगवत धाम जाना भी नहीं था, उसको कहाँ जाना था, पितृलोक में स्वयंभू मनु के पास। ये ब्रह्मा जी के साथ रिलेशन भी समझता था ना कि ब्रह्मा जी के पास स्वयंभू मनु, स्वयंभू मनु पुत्र प्रियव्रत, प्रियव्रत पुत्र, ये कितना पीढ़ी, 3-4 पीढ़ी है। सिर्फ ब्रह्मा जी को अपना संबंधी मानता था, ये इनके भी नाना है ऐसा समझता था और जानता था कि वो शक्तिशाली है, वो कुछ करेंगे। लड़का को शादी करना होता तो बाप को माँ के पास कहता है, माँ बाप के पास बताता है, वो समझ जाते हैं उसके माइंड को, फिर वो कुछ व्यवस्था करते हैं तो इसलिए गुरुजन की अनुमोदन होना चाहिए, अपनी इच्छा से नहीं, इंद्रिय तृप्ति की भावना रखनी नहीं। इसलिए पहले आदर्श दिखाया गया है शादी कैसे होना ना, जैसे महाराज प्रियव्रत की शादी हुई, महाराज प्रिय शादी नहीं करना चाहते, नष्टिक ब्रह्मचारी थे हैं, नारद जी के शिष्य थे, लेकिन ब्रह्मा जी ने ये उनके पिताजी चाहते थे स्वयं भवन इसकी शादी हो, ये गृहस्थ आश्रम आएगा मैं बालपस्थ में जाऊंगा, इसलिए हाँ मना तो कर दिया, बोले नहीं मैंने शादी करूंगा, गुरु जी का सुनूंगा, नारद जी की सुनूंगा। तो इसलिए फिर स्वयं भवन पर ब्रह्मा जी की अनुमोदन लेके आए, ब्रह्मा जी फिर भगवान के अनुमोदन लेके आए, तो अभी जाकर राजी हुए, ऐसा नहीं। शादी शादी एक विवाह यज्ञ है, इसको भी भगवान विष्णु को प्रसन्न करने की एक माध्यम ये भी है, इसलिए इसको कहते विवाह यज्ञ है, ये भी यज्ञ है, लेकिन इसको अनुमोदन होना चाहिए कहाँ से, भगवान की तरफ तो परंपरा से है, ऐसे नहीं कि कैसे भी शादी करूँ। क्या बोला योग माया के प्रभाव से, तो वे तो मैं बताया हुए सब लोग जोगन भाई थे, इसलिए ब्रह्मा जी जिस साल ब्रह्मा जी ने चुरा ली थी उस साल भगवान ने स्वयं ही ग्वाल बाल के रूप में थे, इसलिए गोपियाँ से उनकी शादी हुआ, तो असली तो वो सब कृष्ण के ही पत्नी थे, भगवान उनके साथ नृत्य करते थे, तो वो कहाँ हो गए दूसरी की पत्नी के साथ नृत्य किए, ऐसा नहीं हुआ। आए जो असली ग्वाल बाल थे फिर उनका शादी उनका पत्नी कैसे हो गई, एक भगवान की पत्नी हुए हैं, वो तो ऐसे नाम को पति रहे हैं, राधा रानी के पति जैसे था, उसको शाम होने से क्या होता था, शाम हो जाता था क्या होता, कुछ दिखाई नहीं पड़ता, अंधार कढ़ा रहता था अभिमन्यु, गोपियों के बच्चे थे गोपियों के बच्चे भी थे ठीक है, लेकिन असलियत में प्रामाणिक दृष्टि से भगवान को आरोप करने की दृष्टि से उसको मुक्त करने के लिए उनकी शादी भी हो गया था, ब्रह्मा जी ने ये भी व्यवस्था किया था, भगवान के सभी शादी सभी के भगवान के साथ शादी हुए थे। गोपियाँ कई गोष्ठी के रहते थे साधारण, जैसे हम देखते हैं कि बलराम जी की जो गोपियाँ बलराम के भी रास रचाते थे, उनकी गोपियाँ भगवान के साथ नहीं मिलते थे, उनकी गोपियाँ बलराम की गोपियाँ बलराम के साथ, वो भगवान के साथ साख्य भावना रखते थे, बलराम के साथ माधुर्य, कृष्ण की गोपियाँ कृष्ण के साथ माधुर्य, बलराम के साथ साख्य, उनके साथ संपर्क नहीं रहता था। इन गोपियों की जो बच्चा होते थे उसको जोग माया के द्वारा भगवान की जो लीलाएं किसके माध्यम से होता है, उनकी अंतरंग शक्ति के हैं, अंतरंग शक्ति के माध्यम से सब लीलाएं संपन्न की जाते थे, लेकिन ये सब तो माया, जैसे कोई गोपियाँ आते थे नृत्य करने के लिए रास में आते थे, लेकिन उनकी छाया के एक छाया रूप भी वहाँ भी घर में छोड़ के आते थे, इसलिए वो लीलाओं को समझना भगवान की लीलाओं को इतने आसान नहीं है, जिनको विशेष रूप में भगवान कृपा करते हैं वो उसी लीलाओं को समझता है, भगवान कहते हैं कि जोग माया समावृत है। अब बच्चे थे तो जोग माया द्वारा उनके होता था, जैसे रास में आते थे रास में गोपियां तो नृत्य करते थे, घर में भी गोपियां रहते थे, तो ये सब संतान भगवान को शादी करने के लिए थोड़ी तपस्या किए थे, भगवान के साथ नृत्य करने के लिए तपस्या किए थे, भगवान के साथ रास में नाचने के लिए आए थे। हमने जो दंडकारण्य की ऋषियाँ गोपी बने की अयोध्या वासिनी गोपी मिथिला वासिनी गोपी कई प्रकार की गोपियाँ होते हैं, उसे तपस्या करके आए थे, उपनिषद ये भी सब देवी कई देवी भी सब गोपी बनकर आए थे, भिन्न भिन्न गोपियाँ आए थे भगवान के साथ में नृत्य करने के लिए, ये भगवान के साथ में जौन संपर्क स्थापना करने के लिए इच्छा नहीं किए थे। ठीक है ओके, ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, हरे कृष्ण।